ओम शांति। ज्ञान की बरसात बार बरसात हो रही है ना। बाबा ने हम सबको शक्ति दी है, परिवर्तन शक्ति। इस ब्राह्मण जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियां हमें सुरक्षित रखती हैं, हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी सहयोगी बनती हैं। लेकिन वो शक्तियाँ हमारे पास होनी चाहिए और उनकी स्मृति रहनी चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति में हम हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि प्रकृति अपना डांस कर रही है। जो जिसका कार्य होता है वो करता है, तो हम सभी भी इस प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे प्रकृति वातावरण में अभी ठंडक ला रही है, बरसात से क्या हो रहा है, पेड़ पौधों के पत्तों पर जमी हुई धूल धुल गई, फ्रेश हो गया मौसम एकदम। बारिश के बाद एकदम ताजगी महसूस होती है। तो ज्ञान का सागर बाबा हम सब के ऊपर ज्ञान की बरसात करते हैं। निरंतर अगर ज्ञान की बरसात का हम फायदा लेते रहें, उतना ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बड़े जो आदमी होते हैं वो दिन में 2 बार स्नान करते हैं। तो हम कितने बड़े हैं, हम सब की तो बात ही मत पूछो, कितने बड़े हो गए ना। तो कितने बार स्नान करना चाहिए, हमेशा सागर में डूबे रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा के ऊपर इतनी मैल है कि बिना डूबे धुलने वाली नहीं है वो। इसलिए निरंतर ज्ञान की सरिता, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगोत्री, ज्ञान की वर्षा, ज्ञान का जल अविरल रूप से निरंतर बेहतर रहना चाहिए, अर्थात उसका चिंतन चलता ही रहना चाहिए। जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गाय जुगाली करती है तो तंदुरुस्त मानी जाती है, अगर जुगाली नहीं करती तो बीमारू गाय होती है। तो हम सब कौन से गैया हैं, जुगाली करने वाले हैं ना। लेकिन जुगाली भी कौन से करनी होती है, कभी कभी वो गाय जो है ना पशु प्लास्टिक खा लेते हैं, अब उसको भी अंदर जाता है पेट में, तो फिर क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हम नेगेटिव बातों का, व्यर्थ बातों का, पर चिंतन पर दर्शन की अगर जुगाली करते रहते हैं, तो हम भी जैसे बीमार रहते हैं। बीमारी कौन सी, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, खुशी गायब। खुशी तो होती है अल्पकाल की, अपने हम जिंस मिलेंगे, अर्थात जैसी हमारी व्यवहारिकता होती है उसी के अनुसार हमको अगर हम जिंस मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारे में कमी है, और दूसरा भी हमको ऐसा मिल जाता है थोड़ा मन को आथत मिलता है कि कोई तो है हमारे साथ भी, है ना। तो फिर जुगाली उल्टा काम कर देती है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो ये ब्राह्मण जीवन हम सबको वरदान के रूप में मिला हुआ है। ब्राह्मणों को देवताएं भी नमन करते हैं। महाभारत या रामायण में कई सीन देखे होंगे ना, तो जब भले क्षत्रिय युद्ध करते हैं लेकिन हैं तो मानव ही, वो तो देवताएं भी ऊपर से देखते थे उनको, कोई वरदान देते थे, कोई रोकते थे। तो ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। ये ब्राह्मणों की महिमा अपरंपार है, ब्राह्मणों की लीला भी अपरंपार है। जैसे कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, तो हम सभी उसी भगवान के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण चोटी। तो हम सब आत्माओं की महिमा भी अपरंपार है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारी महिमा करते हैं। किस लिए महिमा करते हैं, हमें सुधारने के लिए। और हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, ओरिजिनल जो हमारी नेचर है, ताकि हम उसका स्वरूप बन जाएं, बोंग को मेहनत ना करनी पड़े, नेचुरल नेचर बन जाए हमारी। जो बाबा के संस्कार है वो हमारे संस्कार नेचुरल स्वतः सूरत और सीरत से दिखाई देने चाहिए। आज की मुरली में था ना सूरत, रूहानी सीरत और सूरत। सूरत क्या होती है, सीरत क्या होती है? सूरत तो ये चेहरा शकल, और सीरत चलन, हमारी चलन कैसी है, अर्थात हमारे बोल कैसे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, संबंध संपर्क में, व्यवहारिकता में हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, उसको सीरत कहा जाता है। तो हम ब्राह्मणों की सूरत और सीरत भगवान के समान होनी चाहिए, चाहिए नहीं है ना, सबकी भगवान समान, बाप समान है ना सब बच्चे। एक होता है बनना है और दूसरा सोच लेना कि हैं, इसमें दोनों में क्या अंतर है? जब हम सोचते हैं बनना है तो एक दूरियां क्रिएट हो जाती हैं कि पता नहीं कब बनेंगे, फिर हम दूसरों को देखने लगते हैं, कोई तो बना नहीं है, दिखता नहीं है कोई भी बना हुआ, तो उसमें थोड़ी एक दूरियां बन जाती हैं। और जब सोच लेते हैं हैं हम, तो दूरियां खत्म। और जब हम सोच लेते कि हम हैं, तो दूसरे भी वैसे ही हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने स्वयं की मानसिकता को बदल दिया। तो जैसी हमारी मानसिकता होगी वैसे हम सभी दिखाई देंगे। अगर स्वयं को हमने कमजोर रखा कि कहाँ बाबा के समान है, वो तो दिखाई नहीं देते लक्षण हैं, तो दूसरे भी हमको ऐसे देखेंगे, तभी तो मुख से निकलेगा कौन बना है, कोई तो बना नहीं दिखता है, कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हलचल के रूप में मन को तंग कर देती हैं, हलचल में ला देती हैं, मन अशांत हो जाता है। तो एक है कि सोचना कि हम कौन हैं, बाप समान हैं। अब जब हम सोचेंगे तो वो स्वतः ही लक्षण हमारे में आने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि फिर चलेगी, वो हमारा फिर चिंतन चलेगा, बाबा समान हैं तो कैसे हैं, तो बाबा कैसा है हमारा, उस पर चिंतन चलेगा। तो बाबा कैसा है? निरंकारी है, गोल गोल है, लाल लाल है, मीठा मीठा है, हाँ जी, प्यारा प्यारा है, रहम दिल है, और सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का सागर है, रहम का सागर है, और त्रिकालदर्शी है। तो ये सारे गुण शक्तियां स्वयं में आने लगेंगे और वो चिंतन हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जितना हमारा चिंतन बढ़ता जाता है तो हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने जो संस्कार हैं, वो स्वतः लोप हो जाएंगे, खत्म नहीं होते हैं, नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अगर खत्म हो गए तो अगले कल्प में कहाँ से आएंगे फिर। तो विनाश होना अर्थात वो स्मृतियां हमारे से बहुत दूर चली जाती हैं, है ना। जैसे कई बार ज्ञान के पॉइंट याद ही नहीं आते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं वो, दूसरी बातें याद आती हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार हमको याद ही नहीं आएंगे, वो ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाएगा, दिव्य गुणों का पलड़ा भारी हो जाएगा, दिव्य संस्कार हमारे में वो झलकने लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं फलक से कहो, क्या आज की मुरली में था, क्या कहो फलक से, फलक से कहो ओम शांति, ऐसे अम्मी थे, अम्मी हैं, अम्मी बनेंगे तो कौन बनेगा, है ना, तो क्या बनेंगे, क्षत्रिय देवता बनेंगे कि हैं, अभी अभी तो बोला गे गे नहीं करने का। तो हमारी जो बुद्धि ना वो खिसक जाती है एक सेकंड में, बाबा कहते पारे मिसले, तो हम क्या सोचना, अभी हम देवता हैं, है ना, ब्राह्मण हैं, फरिश्ता हैं, जो सोमान है, बाबा कहते हैं तुम्हारे तो सोमान है, लिस्ट बनाओ तो कितनी लंबी सूची तैयार हो जाती है, अनेका अनेक सोमान है। और जितना हम उसका चिंतन करते हैं तो नए नए सोमान मन बुद्धि को स्पर्श करते हैं, और उन सोमानों का स्पर्श होने से जैसे आत्मा शीतल हो जाती है एकदम, जैसे आत्मा के ऊपर प्यार बरसता है, जैसे माँ बच्चे को हाथ लगाती है तो कैसा अनुभव होता है। मातृदिवस मनाते हैं ना, कौन सा दिन होता है मातृदिवस, नहीं माँ का दिवस कौन होता है, माँ दिवस होता है ना, हाँ मदर डे कौन सा तक, कौन सी तारीख को आता है? सेकेंड संडे, मई महीने का सेकेंड संडे। और महिला दिवस कब होता है? तो दोनों में क्या फर्क है? फर्क है, क्या फर्क है? एक बड़ा एक छोटा। तो ये कितने, और ब्रदर डे कौन सा होता है? ब्रदर डे कौन सा होता है? देखा भाइयों को भूल गए ना सभी, अभी चार पांच दिन पहले होके गया है ना, होके चला गया वो। तो आज बाबा ने क्या कहा, अपने तीन स्वरूपों को याद करो, है ना, सदा ये स्वरूप हमारी स्मृति में रहे। और कौन कौन से तीन स्वरूप? ब्राह्मण, फरिश्ता, सो देवता। तो मुरली की पहली लाइन क्या थी? आज बाप दादा है? बच्चों के तीन स्वरूप, उसके बीच में आज बाप दादा डैश 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 बच्चों के तीन स्वरूप देख रहे थे। हाँ, चारों ओर के बच्चों के, अर्थात सब तरफ से बाबा, चाहे वो व्यक्त रूप में सामने बैठे हैं या अव्यक्त रूप में हैं, देश विदेश में कहीं भी हैं, गांव में हैं, घरों में हैं, सर्विस में हैं, सब जगह भगवान की नज़र घूमती है। जैसे बाबा इस धरा पर आते हैं तो सब जगह नज़र घूमती है। तो जहाँ अब हम बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ भी बाबा की नज़र घूम रही है ऊपर से, है ना। अंग संग बाबा हमारे रहते हैं, खाली ये स्मृति का खेल है। तो बाबा हमारे चारों ओर के बच्चों के तीन स्वरूप देखते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण अर्थात क्या? सबसे पहले सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्तियां होंगी तो मायाजीत बनेंगे, और मायाजीत ही विजयी बनेंगे। अब सर्वशक्तियां कौन कौन सी है? पहले शक्तियां हमारे हाथ में होंगी तभी तो कहेंगे हम सर्वशक्ति हैं। अगर है ही नहीं हमारे पास तो कोई पूछ ले कि आपके पास कौन कौन सी शक्ति है, तो कौन कौन सी शक्तियां? वो आठ शक्तियां छोड़ के बताओ दूसरी। तो सहन शक्ति, तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो हम शाम को यही चिंतन कर रहे थे, क्योंकि सारा ज्ञान अव्यवस्थित जब होता है ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। जब कोई भी चीज़ को हम व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो उसका उपयोग करने को मन भी करता है। जैसे घर में कपड़े बिखरे पड़े हैं, भले आपने धुलाई करके रखे हैं, प्रेस नहीं किया उनको, सारे इधर बिखरे पड़े हैं, तो पहनने को मन भी आपका भारी भारी रहेगा। और प्रेस करके रखे हैं, एकदम तय लगा के रखे हैं, सिस्टमेटिकली रखे हैं, तो पहनने को मन भी होगा, हाँ ये बिना सोचे पहन लेंगे। उसी तरह हमारा ज्ञान भी हमें व्यवस्थित तरीके से हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहली शक्ति है साइलेंस की शक्ति। जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं या मुरली सुनते हैं या कहीं भी कुछ भी सुनते हैं, तो अगर हमारा मन साइलेंस नहीं है तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, भटकता रहेगा। सबसे पहले मन को मौन अर्थात शांत करना है, उस साइलेंस की धरनी में फिर ज्ञान के बीज अंकुरित होंगे, वो शक्तियां वहां बैठने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब एक साथ साथ में दृश्य भी मर्ज करो, है ना, कि हमारी मन की भूमि पर साइलेंस की शक्ति कमल फूल के ऊपर बैठ गई है ना। गुलाबी कमल फूल है, पंखड़ियां हैं उसमें, कितनी पंखड़ियां वो अपने हिसाब से ज्यादा कम कर लो आप, और उसके ऊपर शक्ति बैठी है साइलेंस की शक्ति। ये मन बुद्धि है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर पहली शक्ति बैठी है साइलेंस की शक्ति। और साइलेंस की शक्ति के अवतरित होते ही हमारा मन जैसे एकदम शांत हो गया, संसार के सारे विचारों से मुक्त हो गया, देह और देह की स्मृतियों से एकदम शांत हो गया। तो साइलेंस की शक्ति हमारे मन में अवतरित होगी, और इस साथ साथ में इसका योग का प्रयोग भी करना है कि साइलेंस शक्ति अवतरित कहाँ से हुई? स्वीट साइलेंस होम से अवतरित हुई है, परम धाम से अवतरित हुई है। और किसने भेजा उसको? साइलेंस का सागर, शांति का सागर उसने भेजा। किस लिए भेजा? कि जाओ मेरे बच्चे के मन में बैठ जाओ। उस मन को कैसा बनाना है? सुमन, अच्छा मन, श्रेष्ठ, जिसमें अच्छे अच्छे संकल्पों का प्रसाद ठहर सके वहाँ। तो सबसे पहली शक्ति साइलेंस की शक्ति। फिर साइलेंस की शक्ति होगी तो दूसरी शक्ति आएगी, कौन सी होगी? सहन शक्ति, बाद में काम पड़ेगा, अभी वो भी आएगी धीरे धीरे। दूसरी शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति महसूस करो और देखो, विजुलाइज करो, जैसे परमधाम से आ रही है शक्ति। किस रूप में? एक सूक्ष्म रूप में आ रही है, सूक्ष्म शरीर के रूप में आ रही है, हल्की, और वो एकदम सुनहरी कलर है, और आई और यहाँ बैठ गई आके। तो दूसरी शक्ति कौन सी बैठ गई? एकाग्रता की शक्ति। अब साइलेंस की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति दोनों मिलकर कार्य कर रही हैं, क्या? हमारे मन को स्थिर कर रही हैं। मन को जो चाहिए, मन उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि मन एकाग्र होगा तो ज्ञान ठहर सकेगा, मन एकाग्र होगा तो गुण ठहर सकेंगे, उसमें चिंतन कर सकेंगे। तो दूसरी शक्ति होगी कौन सी? एकाग्रता की शक्ति। और तीसरी शक्ति समय की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। तीसरी शक्ति ज्ञान की शक्ति, क्योंकि ज्ञान चाहिए अंदर में। तो अब फिर महसूस करो कि ज्ञान का सागर शिव बाबा परमधाम से ज्ञान की शक्ति को भेज रहा है, और ज्ञान की शक्ति मुस्कुराती हुई आकर इस प्लेटफॉर्म पर बैठ गई है, मन बुद्धि के मैदान में, है ना। और बहुत वहाँ एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, ईश्वरीय शक्तियों का प्रकाश फैल रहा है ना। एनर्जी जैसे चार्ज हो रही है आत्मा, जैसे आत्मा अंदर से मुस्कुरा रही है एकदम। तो तीसरी शक्ति होगी कौन सी? ज्ञान की शक्ति। फिर चौथी शक्ति है मनन शक्ति। अब ज्ञान आ गया, ज्ञान का क्या करेंगे फिर? कुछ तो करना पड़ेगा, तो ज्ञान का मनन करेंगे। तो चौथी शक्ति अवतारित हुई कौन सी? मनन शक्ति। अब मनन शक्ति को कार्य में लगाना है। तो मनन शक्ति अर्थात फिर सोचना है कि मुझे किस चीज़ का मनन करना है, या उससे पहले मेरे पास कौन कौन सा ज्ञान है वो स्मृति में लाना। और ज्ञान कुछ भी याद आए, मुरली का कोई भी पॉइंट याद आए, किसी भी मुरली, जो हमने बचपन से लेकर ब्राह्मण जीवन के बचपन से लेकर अभी तक जो भी मुरली सुनी, कोई भी पॉइंट बुद्धि में आए, सब ताजे ही हैं। ये नहीं सोचना कि आज की मुरली याद नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई तो मुरली याद होगी ना, कोई तो याद होगी कि नहीं होगी? कोई स्लोगन ही याद होगा, कोई वरदान ही याद होगा, कोई सोमान ही याद होगा। अब उस पॉइंट को पकड़ लिया, अब मनन शक्ति ने काम आरंभ कर दिया। तो कौन से ज्ञान पर मनन करेंगे, कोई एक बिंदु बताओ, फिर उस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि मनन शक्तियों को कार्य में लगाना है। अगर शक्तियों को कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो अपनी नहीं बनेंगी। दिव्य बुद्धि, हाँ, आय का वरदान। तो स्वयं ज्ञान सागर ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, और इस दिव्य बुद्धि में दूसरा संसार का कोई किचड़ ठहर नहीं सकता। ये दिव्य बुद्धि वरदानों से भरपूर है, ये दिव्य बुद्धि परमात्म प्यार से भरपूर है, ये दिव्य बुद्धि, अब बताओ आप, हाँ जी, सिद्धि प्राप्त कराती है, ये दिव्य बुद्धि परमात्म प्यार का अनुभव कराने वाली है, ये दिव्य बुद्धि साक्षात्कार कराने वाली है, ये दिव्य बुद्धि विश्व की सेवा करने के लिए नए नए प्लान बनाने वाली है, और सकास देने वाली है, हाँ, वेरी गुड, हाँ, बाप समान बनाने वाली है, हाँ, निराकार जो नहीं दिखता है अदृश्य को देखने वाली है, ये दिव्य बुद्धि संसार की सब आत्माओं की बुद्धियों को भी खोलने वाली है। ये दिव्य बुद्धि संसार की जो आत्माएं जिनकी बुद्धि नहीं चलती है उनकी बुद्धि को चलाने के लिए शक्ति देने वाली है, क्योंकि स्वयं भगवान ने दिए। तो चिंतन करना एक भी पॉइंट लेके, तो बाबा कहते हैं ना ये हाथ की सफाई जादूगर दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ भी दिव्य बुद्धि की सफाई है, तो सफाई से क्या होता है, हथेली पर बाबा कहते बहिष्ट, जो हमारे लिए सौगात लेके आते हैं बाबा। तो दिव्य बुद्धि का विस्तार से चिंतन करना है, इस दिव्य बुद्धि के अंदर ज्ञान के सिवाय कुछ भी ठहर नहीं सकता, दूसरा कोई भी संकल्प स्पर्श नहीं कर सकता, दूसरी कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती, किसी की नेगेटिव थॉट भी इसमें ठहर नहीं सकते, क्योंकि दिव्य बुद्धि स्वयं भगवान ने दी है। तो ये कौन सी शक्ति से दिव्य बुद्धि बनी, मनन शक्ति से। तो कौन कौन सी शक्ति होंगी, चार। तो सबसे पहले साइलेंस की शक्ति, फिर दूसरा एकाग्रता की शक्ति, तीसरा ज्ञान की शक्ति, फिर चौथा मनन शक्ति। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी शक्ति होगी, मनन और चिंतन ये दोनों बहनें इकट्ठी इकट्ठी हैं, तो मनन चिंतन की बात होगी। और कौन सी शक्ति, अब मनन चिंतन हो गया, इसके बाद कौन सी शक्ति आएगी हमारे पास, जितना मनन चिंतन करते जाएंगे उतना बुद्धि प्योर बनती जाएगी, पवित्रता की शक्ति, जो हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो महसूस करो, देखो आंखों से कि पवित्रता के सागर ने परम धाम से, शांति धाम से, उस पवित्र धाम से, उस पावन धाम से पवित्रता की शक्ति को नीचे भेज दिया है, और वो पवित्रता की शक्ति अवतरित होगी कहाँ, इस प्लेटफॉर्म पर। ये भी एक पावन धाम है, हमारा मन बुद्धि भी एक ब्रह्मांड है ना। तो इसके अंदर आकर पवित्रता की शक्ति बैठ गई, और सारे पवित्रता का प्रकाश मन बुद्धि में जगमगा रहा है, वो सारा पवित्रता का प्रकाश इस रथ में भी धीरे धीरे समाता जा रहा है, वो पवित्रता की शक्ति सारी कर्मेंद्रियों को शीतल करती जा रही है, क्योंकि हमको हर शक्ति से कार्य लेना है, ऐसे बिठाएंगे थोड़ा नहीं। अब फैक्ट्री तो तभी चलेगी जब जो लेबर आते हैं, जो काम करने वाले काम ही करेंगे तभी तो फैक्ट्री चलेगी, अगर आए और काम किया नहीं तो खा पी के चले जाएंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो हमारा ब्राह्मण जीवन भी, बाबा कहते बड़े से बड़े तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं है, बड़े से बड़े व्यापारी हो। तो ज्ञान धन को हमको बढ़ाना है, कम नहीं करना है, तो उन शक्तियों का सदुपयोग करना है। अगर केवल हमको स्मृति में है कि हाँ पवित्रता की शक्ति है, लेकिन कार्य हम लगा ही नहीं रहे, वो खाली बैठी पड़ी है उधर ही, है ना। जैसे कई बार देखते हैं ना, लेबर भी कहीं काम करने जाते हैं तो बैठे रहते हैं, जब तक उनको देखने वाला नहीं होता, इर्द गिर्द नहीं आता, तो खा पी के चले जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान भी ऐसा ना कि ठहर ही जाए, ऐसे ही वो हमारा एक सहायक बन जाए। बाबा ने ज्ञान हमको क्यों दिया है, कि अपने जीवन में उसका उपयोग करो। तुम बच्चों मेहनत नहीं करो, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं करते इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना है, तो कौन सी शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति। तो देखना है कि सारे दिन में पवित्रता की शक्ति का मुझे कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, क्योंकि चंचल इसलिए होती है क्योंकि हमने शक्ति को कार्य में नहीं लगाया। तो बाबा कहते एक एक शक्ति को कार्य में लगाओ, और वो शक्तियां किसके लिए हैं, हमारे लिए हैं, वो हमारे अपने संस्कार हैं। वो अगर उन संस्कारों को इस समय हम अपने स्वरूप में नहीं लाएंगे तो भविष्य में राज्य कैसे करेंगे। अभी के संस्कार तो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं ना। तो ये सारी शक्तियों को हमें अपने रग रग में समाना है। तो धीरे धीरे ज्ञान हमारी रगों में समाएगा, हमारे जो नेचुरल संस्कार बन जाएंगे, नहीं तो केवल एक सामान्य जीवन शैली हमारी बनी रहेगी जिसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। स्वयं को महसूस नहीं होता, कई बार होता है ना, स्वयं को महसूस होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन मेरे जीवन का परिवर्तन हो रहा है, वो शक्तियों का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, जो भगवान ने मुझे प्रॉपर्टी दी है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। खाली सुनने सुनाने तक नहीं, स्वयं का चिंतन जरूर करना है। इसलिए हम हमेशा एक मन में रखते हैं, जितनी भी क्लासेस सुनती सब भूल जाएंगी, वो किसी की भी सुनते हैं आप, सब की सब भूल जाएंगी। जो चिंतन हम खुद का करेंगे वो ही हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए चिंतन बहुत अनिवार्य है और उसके लिए खुद को सतर्क करना पड़ेगा। तो पांचवी शक्ति होगी पवित्रता की शक्ति, और पवित्रता की शक्ति है फिर आएगी शांति की शक्ति। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब हमारे जीवन में प्योरिटी की पावर आएगी तो शांति की शक्ति, शांति अर्थात हम दूसरों को शांति की अनुभूति करा सकते हैं। जो बाबा कहते हैं आत्माएं अशांत होकर भटक रही हैं, तड़फ रही हैं, उनको ठिकाना दो, सहारा दो, फरिश्ता अर्थात सबको सहारा देने वाला, तो हम शांति की शक्ति से भरपूर होंगे, तभी तो दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। उसमें हमको बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे मंदिरों में देवियां बोलती हैं, कोई केवल जाने से देखने से शांत हो जाते, कितने अच्छे वाइब्रेशन होते हैं, तो वो तो जड़ मूर्ति है और हम तो चैतन्य में हैं, तो हमारे से तो ज़्यादा शांति आनी चाहिए। लेकिन होता है क्या है, बहुत अच्छा होता है। तो हम चलती फिरती शांति की मूर्तियां हैं, चैतन्य मूर्तियां हैं। जो बाबा ने कहा ना, सूरत और सीरत से, रूहानी सूरत और सीरत से दिखाई देना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो छठी शक्ति आ गई शांति की शक्ति। अब सातवीं शक्ति प्रेम की शक्ति, स्नेह। संसार में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, स्नेह की है। स्नेह का जैसे अकाल पड़ा हुआ है ना। ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं तो सबसे ज्यादा हम सबको क्या मिलता है, स्नेह। ज्ञान तो कभी समझ में बहुत सालों बाद आता, अभी तक भी पूरा थोड़ा ज्ञान समझे हैं। बाबा ने बोला अंत तक आज 95% और 5% की बात कही ना, तो ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन पहले तो वो स्नेह से जो तोसा खिलाया होता है ना, बस वो घायल कर जाता है। वो स्नेह की टोली जो है बस वहीं भगवान का बना देती है। उस टोली कोई ज्यादा ये थोड़ा नहीं, लेकिन उस टोली में स्नेह समाया हुआ है, ईश्वरीय स्नेह, परमात्म स्नेह समाया हुआ है। तो अगली शक्ति होगी स्नेह की शक्ति। उसकी अगली शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं, हम तो वैसे 36 की सूची बनाई थी, 36 गुण और 36 शक्तियां। शक्तियां तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगली शक्ति खुशी गुण कहेंगे, और दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता, कोई भी काम को करना है तो दृढ़ता बड़ा जरूरी है। अगर दृढ़ता नहीं है तो काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। और दृढ़ता हमारी भंग क्यों होती है, जब हम अपनी क्षमता से अधिक गोल अचीव करना चाहते हैं। जितनी हमारे में पहले क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं, पहले वो गोल को अचीव करना है, और वो छोटे छोटे गोल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दृढ़ संकल्प करे आज तो मुझे 8 घंटे योग करना ही है और हुआ ही नहीं, तो दृढ़ता भंग। और भंग हो गई तो क्या आएगा, गिल्ट कॉन्शियसनेस, दिल शिकस्त हो जाएंगे, और अगले दिन में क्या करेंगे, 6 घंटा योग करेंगे, फिर बोलेंगे चलो आज कम कर देते हैं, और 6 घंटा नहीं हुआ तो फिर दिल शिकस्त। तो दिल शिकस्त का पलड़ा भारी हो जाएगा, दृढ़ता का पलड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को समझना है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार, अपने परिवार को देखते हुए, सब चीज़ें देखते हुए हमको छोटे छोटे गोल बनाने हैं, ताकि हमारे जीवन से दूसरों को भी फायदा हो। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। आज बाबा ने ताज दिया ना, कौन सा, जिम्मेवारी का ताज दिया है। तो हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, संसार के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज स्वयं भगवान ने हम सबके सिर पर रखा है। तो कोई सोच समझ के रखा होगा ना, ऐसे थोड़ा नहीं रख दिया। तो हमारे में वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को विकसित करने के लिए हमारी समझ भी वैसी होनी चाहिए। अंधश्रद्धावश नहीं करना, ब्लाइंडली नहीं कुछ भी करना है, पूरी समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो कौन सी शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। तो दृढ़ता को कहां कहां उपयोग में लाएंगे, खुद को परिवर्तन करने में, और हाँ खुद को ही परिवर्तन करने में सारे दिन में कहाँ कहाँ उपयोग लाएंगे जो प्रैक्टिकल में हो, अमृत वेले से और नहीं, वो थोड़ा कर्मों में आनी चाहिए कहाँ, हाँ एक बोल में कि आज मुझे ऐसा वैसा बोल नहीं बोलना है या अनावश्यक बोल नहीं बोलनी है, हाँ गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करते नहीं है वो आ जाता है वो, लेकिन करना नहीं है, आने नहीं देना उसको। तो एक है कि अनावश्यक बोल नहीं बोलने, और कौन कौन से अनावश्यक बोल हैं, जिससे आत्मा की अवनति होती है वो सारे अनावश्यक बोल हैं, या दूसरों को आघात पहुंचता है, दुख पहुंचता है, वो सारे अनावश्यक बोल हैं। तो बोल कौन से होने चाहिए, पिछले संडे की मुरली में भी था बोल की बात, संकल्प समय संकल्प बोल, तीन मुख्य बाबा ने सारा उन पर हम सबको शक्तिशाली बनाया। तो बोल हमारे कैसे होने चाहिए, वरदानी बोल, शक्तिशाली बोल, कम बोल, धीरे बोल, मीठे बोल, उमंगुसा के बोल, सोच समझ के बोल, तोल मोल के बोल, और नहीं बोले तो सबसे अच्छा है। तो हमारा बोल भी बहुत काम करता है, ये बोलने की भी एक शक्ति है, पावर है ये। मौन रहना आसान है लेकिन कंट्रोल स्पीच वो मेहनत है, मौन रहना गोल्डन है, कंट्रोल स्पीच डायमंड है। जहां हमको बोलना चाहिए वहां यथार्थ युक्तियुक्त योग्युक्त सारयुक्त कल्याणकारी बोल बोलें तो वो जैसे वरदानी बोल हैं। हमारे मुख से कभी भी कटाक्ष भरे या किसी को दुख देने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। कई बार होता है सामने वाले बोल बोल देते हैं ऐसे, लेकिन बोल में जो वाइब्रेशन है ना, सामने वाले को पता तो चल जाता है ये किस तरीके से बोल रहा है, हमारे कल्याण के लिए बोल रहा है या सीधा हमारे पर कटाक्ष कर रहा है, वाइब्रेशन कैच हो जाते हैं वो, क्योंकि बोल में वाइब्रेशन भरे हैं। तो अभी शेष शक्तियों के वाइब्रेशन हमारे बोल में भर गए, कौन कौन सी शेष शक्तियों के, शे होगी सात, सात शक्तियां, साइलेंस आठ, आठ हो गई, हाँ तो साइलेंस पावर, एकाग्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, है ना, तो ये होगी आठ शक्तियां। अब और कौन सी शक्ति है, बहुत शक्तियां अभी तक तो पड़ी है, संतुष्टता और तो इतनी सारी शक्तियां, तन की भी शक्ति है, तन भी हमारा बाबा ने बोला ना एक मुरली थी, तन मन धन, ये भी शक्तियां हैं। अगर तन हमारा ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तन को भी शक्तिशाली बनाने की समझ चाहिए। तो ये साथ साथ में ऊपर बिठाते जा रहे हो कि ना, कि केवल चार ही बिठाई थी, बाकी नहीं अवतरित हुई, क्योंकि बुद्धि खिसक जाती है। यही तो कला हमको सीखनी चाहिए, भले सामने वाला सुनाने वाला भूल जाए लेकिन खुद नहीं भूलने का है। तो आठ शक्तियां अंदर में बैठी अपना काम कर रही हैं। अब वो आठ शक्तियां हमारे तन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें समझ दे रही हैं कि हमें कसरत करनी है, प्राणायाम करना है, भोजन पर थोड़ा ध्यान रखना है, सैर करनी है, ये शरीर के लिए, जैसे वो शक्ति हमको प्रेरित कर रही हैं। क्योंकि सारा काम स्वयं के ऊपर करना है, स्वयं पर काम करेंगे तो दूसरों को अनुभव करा सकेंगे, अगर स्वयं ही अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को अनुभव कैसे कराएंगे। और तन को तंदुरुस्त रखना ये सबसे बड़ी कला है, ज्ञान सुनना सुनाना फिर भी आसान है लेकिन तन को तंदुरुस्त रखना, क्योंकि जब सामने गुलाब जामुन आ जाता है तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर गायब हो जाती है, है ना। तो शक्तियां स्वयं ही काम करती रहें, ये चीजें तो आती रहेंगी जीवन में, लेकिन अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की भी कला सीखनी है, क्योंकि बहुत अमूल्य तन है ये। तो तन की शक्ति, दूसरा है मनसा शक्ति को हम अगर जोड़ेंगे तो है वो संकल्प की शक्ति। हमारा एक एक संकल्प ऐसा होना चाहिए जो स्वर्णिम अक्षरों में लिख सके। और बाबा ने तो मुरली में कहा है, तुम्हारे संकल्प ऐसे होने चाहिए जो भगवान को भोग लगा सके उन संकल्पों को। कितने बड़े महावाक्य हैं, एक एक संकल्प हमारा भगवान के ऊपर अर्पित हो सके। दूसरा, ब्रह्मा भोजनम खिला रहे हैं, बाबा को भोग लगा रहे हैं और संकल्प हमारे ऐसे वैसे हैं, 24 घंटे हमारा चेहरा बिगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बाबा को भोग लगा रहे हैं, बाबा स्वीकार करेगा उसको? तो एक एक संकल्प हमारा सारे दिन में ऐसा होना चाहिए कि भगवान के ऊपर अर्पित हो सकें और उन संकल्पों का प्रसाद हम दूसरों को ग्रहण सके करा सकें और वो संकल्प दूसरे के जीवन को भी सुख शांति से भर दें, दूसरे के जीवन को भी जैसे प्रभु प्रसाद बना दें। तो संकल्पों की बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प तो सबसे बड़ी शक्ति है ये। तो संकल्प हमारे कैसे होने चाहिए? पावरफुल होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए, कम संकल्प होने चाहिए, धैर्यवत संकल्प होने चाहिए, पवित्र संकल्प होने चाहिए, समर्थ संकल्प होने चाहिए, सकारात्मक संकल्प होने चाहिए, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, अंग्रेजी में एलिवेटेड संकल्प, उर्दू में भी बोल दो फिर, अच्छी बात है। उतना बुद्धि हमारी स्वच्छ हो रही है, ये ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान का चिंतन करना भी योग ही है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हम किसके ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं? बाबा के ज्ञान का। तो बाबा से ऊपर से देख रहे ना कि मेरी श्रीमत का बच्चे पालन कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना, सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान का मनन चिंतन करो, कई बार बाबा कहते हैं। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना भी योग की ही श्रेणी में आता है, लेकिन जो ज्वालामुखी योग कहेंगे या बीज रूप, ये सारा ज्ञान का चिंतन करने के बाद धीरे धीरे उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, फिर हमको ज़्यादा ज्ञान चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर हम एक ही पॉइंट में ठहर जाएंगे, बाबा के पास बैठ जाएंगे, जैसे बाबा वैसे मैं, वो स्वरूप में समा जाएंगे। तो कौन सी शक्ति पर चर्चा चल रही थी? संकल्प शक्ति। और कौन सी शक्ति है? ऐसे बहुत सारी शक्ति हैं, शक्ति शक्ति लिखी बहुत सारे जाएंगे, फिर मुरली रह जाएगी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। तो शक्तियों की लिस्ट बनानी है, सबको अपनी अपनी शक्तियाँ तैयार करनी है और वो सारे की सारी याद करनी है। जैसे छोटा बच्चा कैसे याद करता है, ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं। आज ज्ञान सौर में कॉन्फ्रेंस चल रही ज्यूरिस्ट विंग की, है ना, तो वहाँ बड़े बड़े जजेज आए हुए हैं। तो सूरज भाई क्लास करा रहे थे, अब जय तो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि सब बच्चे बनकर बैठ जाओ अगर कुछ आपको अनुभव करना है तो। तो ऐसे हम हमेशा बच्चे बनकर रहे, बच्चे अर्थात स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, गॉडली स्टूडेंट। तो क्योंकि हमारी जिज्ञासा वृत्ति कभी शांत नहीं होनी चाहिए, भगवान के प्रति, भगवान के ज्ञान के प्रति हमारी पिपासा जिज्ञासा में दिन प्रतिदिन वो बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर जिज्ञासा वृत्ति पर अगर विराम लग गया तो हमारा पुरुषार्थ भी रुक जाता है, इसलिए जिज्ञासा वृत्ति हमारे कम नहीं होनी चाहिए। तो मायाजीत ब्राह्मण अर्थात पहले हैं सर्वशक्ति संपन्न, ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। अभी माया कौन कौन सी आती है? उसके बाबा ने कहा दो दरवाजे हैं, मैं और मेरापन। ये मैं और मेरापन के दरवाजे हैं। तो मैंपन अर्थात क्या? मैं अर्थात अहंकार, है ना। एक मूर्तिकार था, बहुत फेमस था, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था कि एकदम जीवंत लगती थी वो। एक जीवंत व्यक्ति खड़ा कर दो एक मूर्ति, दोनों में से पहचान नहीं पा सकते थे कि कौन सा ये डुप्लीकेट है और कौन सा असली है, एकदम एक्यूरेट। तो बहुत प्रसिद्ध था, मूर्तियां बनाता था वो शिल्पकार, लेकिन उसको थोड़ी अपनी कला का अहम भी था और वो अपने जीवन से बहुत प्यार करता था, मृत्यु से बड़ा डरता था। अब एक दिन आ गया, शरीर तो छोड़ना ही है सबको, यमदूत जी अवतरित हो गए ऊपर से, तो उसको मृत्यु का भय, तो बोला क्या किया जाए, क्यों मैं यमदूत को भी धोखा दे दूं। तो उसने 11 मूर्तियां बना दी एकदम एक्यूरेट अपने शक्ल चूरते से, और वो खुद भी खड़ा हो गया। अब ऊपर से आया यमदूत, देखने लगा कि उसकी उम्र तो पूरी हो गई है, लेकिन इसमें असली कौन है, कैसे पहचाने, तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, अब इसको लेके कैसे जाऊं। तो यमदूत भी थोड़े कम थोड़े नहीं होते हैं, वो भी होशियार था। तो उसने ना मूर्तिकार की बड़ी महिमा की, बोला क्या मूर्तिकार है, एक जैसी प्रतिभा दिख रही है, इतनी बढ़िया तो कभी देखी नहीं मैं, कमाल है उसकी। अब उसके अंदर लड्डू तो फूट रहे हैं। बोला लेकिन इस मूर्ति में एक त्रुटि रखी है इसने। जैसे बोला त्रुटि, बोला तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, मेरे से गलती कभी हो ही नहीं सकती है। बोला अब यही गलती है कि तुम बोल पड़ा, अभी यही त्रुटि है। तो हमारे जीवन में कहीं ऐसी कोई त्रुटि नहीं रहे जो अहम वश हम यमदूत के हाथ में लग जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं 6 प्रकार की विशेषताएं जो देववान की, कौन कौन सी 6 बातें बताई थी। सबसे पहले बुद्धि का अहंकार, दूसरा विशेषताओं का, तीसरा विशेष कलाओं का, चौथा सफलता का, पांचवा संस्कारों का, और एक स्वभाव का। तो पहला था बुद्धि का, दूसरा था स्वभाव का, तीसरा था संस्कार का, चौथा विशेषताओं का, पांचवा विशेष कला का, और छठा सफलता का। ऐसे कंटिन्यूस था, तो आगे पीछे नहीं, जैसे है ना वैसे याद करने की कोशिश करनी है। तो कौन कौन से 6 विशेषताएं जो अहंकार के रूप में हमारे अंदर होती हैं, तो कौन कौन सी थी 6। सबसे पहली बुद्धि का अहंकार आ जाता है, दूसरा अपने संस्कार, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत संस्कारवान हूँ, सबसे अच्छे मेरे संस्कार हैं, मैं बहुत सर नेचर वाला हूँ, है ना। स्वभाव, स्वभाव तो मेरा बहुत ही शांत है, मेरा जैसा तो किसी का है ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। ये सूक्ष्म अहंकार हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। मेरे में जो विशेषताएं हैं, मेरे में जो सिफतें हैं, ये तो किसी में दिखाई नहीं देती हैं। विशेष कला है मेरे में, जो मेरा हुनर है दूसरों में तो है ही नहीं है। फिर अपना हुनर, अपने हुनर से दूसरों को हम लाभान्वित भी नहीं करते हैं, ताकि मेरी थोड़ी कोई खुशामद करे तब मैं इसका सहयोग करूं। तो अपनी विशेष कला का भी अहम हो जाता है, और सेवाओं में सफलता का अहम। तो ये मैं और मेरेपन के दरवाजे हमको फरिश्ता नहीं बनने देते हैं। बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, संस्कारों में लाइट, स्वभाव में लाइट, संबंध संपर्क में लाइट। क्योंकि सारे दिन में हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो कोई सामने से प्रतिक्रिया तो आएगी ना, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं में भी हमारा मन हलचल में नहीं आए। जो बाबा कहते ना एक रस, हलचल में नहीं, हलचल में कौन आता है, क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले, कभी हार कभी जीत, और ब्राह्मण अर्थात सदा माया जीत, सदा विजयी, सदा अधिकारी, और क्षत्रिय अर्थात रायल भिखारी, मांगने वाले। तो हम बाबा से मांगने वाले नहीं हैं, भगवान के बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके संस्कार हमारे संस्कार हैं, हम उसके समान हैं। तो चिंतन करना है वो, तो ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, ब्राह्मण अर्थात विजयी, ब्राह्मण अर्थात ने एक चौथा भी बोला ना, मैं और मेरेपन से मुक्त, और अधिकारी, अधिकारी हैं, और ब्राह्मण अर्थात 3 चीजें, ट्रिपल टी, कौन कौन सी, ताज, तख्त और तिलकदारी। तो बाबा ने हम सबको कौन सा ताज दिया है, जिम्मेवारियों का ताज। अगर हमको ये याद रहता है कि भगवान ने हमारे सिर पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज रखा है, तो हमें फुर्सत कहाँ होगी व्यर्थ में जाने की। तो दिन में थोड़ा सा भी टाइम मिलता ना, इमर्ज करना है, सारे संसार की आत्माएं मेरे सामने, केवल संकल्प ही करना है, सारे संसार की आत्माएं मेरे सामने हैं, और सुप्रीम सोल से एनर्जी आ रही है, और मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें बाबा उन आत्माओं में दे रहा है, उन आत्माओं को चार्ज कर रहा है। संकल्पित तो करना, केवल यही तो योग है, संकल्पों का ही सारा खेल है। हम थोड़ा मूंझ जाते हैं, ब्राह्मण था तो मूंझने वाले नहीं, मौज में रहने वाले, और मूंझ जाए तो बाबा को अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे और मूंझ रहे हैं, बताओ। तो ब्राह्मण था सदा मौज में रहने वाले, तो हम सबके ऊपर बाबा ने जिम्मेवारी का ताज दिया है। तो सवेरे अमृत वेले महसूस करना, जैसे बाबा ने बताया श्रृंगार तुम सजी सजाई मूर्ति हो, तो महसूस करना है कि बाबा ने मेरे सिर पर ताज रखा है, एक चमकता हुआ ताज है, और उस पर ताज पर वरदान लिखे हुए हैं, कौन कौन से, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये मेरे लिए बाबा लिखा है, बाबा ने लिखा है, तुम सर्व आत्माओं की सहारा हो, हैं सबको साकाश देने वाली हो, सबको शक्तिशाली बनाने वाली हो, सबको बाबा से जोड़ने वाली हो, सबको सुख शांति देने वाली हो, ये बाबा जिम्मेवारियों का ताज पहना रहे हैं मुझे सिर पर। फिर दूसरा ये हो गया ताज, दूसरा तिलक, तो स्मृतियों का तिलक, कौन कौन सी स्मृतियां दी हैं, तो स्मृतियों की लिस्ट, उसके लिए पहले जो शक्तियां हैं, तो शक्तियों के जो आप लिस्ट बनाएंगे, तो लाना उस मुद्दे में लाना आप उस लिस्ट को, ये कौन कौन सी स्मृतियां मुझे लाई हैं कि तुम सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हो, कौन कौन सी शक्ति, फिर मैं उसको आरंभ कर दो उसको, साइलेंस की शक्ति, वो स्मृति स्वरूप में, मैं साइलेंस के स्मृति स्वरूप धारी आत्मा हूँ। फिर दूसरा एकाग्रता की शक्ति से संपन्न हूँ, तीसरा ज्ञान की शक्ति से संपन्न हूँ, चौथा मनन शक्ति से संपन्न हूँ, पांचवा पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूँ, छठा शांति की शक्ति से संपन्न हूँ, प्रेम की शक्ति से संपन्न हूँ, दृढ़ता की शक्ति से संपन्न हूँ, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, बहुत सारी शक्तियाँ। फिर दूसरी आठ शक्तियाँ, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी मेरी निजी संपत्ति है, उनके में मैं स्मृति स्वरूप हूँ। तो सवेरे सवेरे हमको पता चलेगा मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो दिन में वो कार्य करती रहेंगी अपने आप। अगर हम सवेरे देखेंगे नहीं कि हमारी अलमारी में क्या रखा है, तो सारा दिन में याद ही नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो सोना बेचने वाले क्या कहते हैं उनको, सुनियारे, है ना, तो वो हीरे की डिब्बे को देखते हैं, उसको साफ करते हैं डेली, तो बाबा कहते तुम तो मेरे शो केस में हो, शो पीस हो, तो हमको सवेरे सवेरे अंदर खोल के देखना, झांकना है कि इस बुद्धि रूपी अलमारी में क्या क्या रखा हुआ है, थोड़ी ऐसी वैसी बातें तो नहीं रखी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को चार्ट लिखते हो तो जो भी ऐसी वैसी बातें सारी बाबा के आगे अर्पित कर दो, निकाल के रख दो, है ना। और पहले भी बताया था, एक बार दो माताएं थी, तो एक माता दूसरी माता को पूछती है कि बाबा को चार्ट कैसे बताना होता है। अब चार्ट देना तो बड़ा टेढ़ी गिर होती है वैसे, है ना, तो माताएं तो बाबा को अपना बनाने के लिए बड़ा होशियार होती हैं, है ना। तो एक माता दूसरी माता को कहती है बड़ा सिंपल है, मैं तो ऐसे करती हूँ, आत्मा को निकाल के बाबा के आगे रख देती हूँ, बाबा भी आप देख ले जो भी देखना है। अब जो करना कर लो, तो बाबा भी मुस्कुराता होगा, है ना। तो हमको अपना चार्ट देना है, डोल रात को सोते इसमें वो सारा किचड़ा जो भी है ना, बाबा उसे निकाल देगा अपने आप ही, सुप्रीम सर्जन है ना, तो बाबा को करना पड़ेगा, वो बाध्य हो जाए। बाबा ने क्या बोला कि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तो मदद के लिए तो हाजिर हूँ। तो सचमुच उसका हमको उसका अनुभव करना है, समय पर उसको कार्य में लगाना, उससे मदद लेनी है। अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, अभी तो बाबा कहते हैं मदद देने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ, तुम बच्चों के लिए तो हूँ। तो ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, ब्राह्मण अर्थात विजयी, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, ब्राह्मण अर्थात ताजदारी, तिलकदारी और तख्त। अब बाबा ने हम सबको बहुत बड़ा तख्त दिया है, तो कौन सा तख्त है, बाबा का दिल तख्त। तो सवेरे सवेरे बाबा ने कहा ना, ये दिल तख्त तो इतना बड़ा है कि सारे ब्राह्मण इस पर सैर करें तो भी कम पड़ जाएगा, बहुत बड़ा तख्त है ये, है ना, ब्राह्मणों के लिए सवेरे सवेरे सैर करने के लिए। तो और उस तख्त पर फिर कंडीशन भी है सैर करने की, ये तख्त कैसा है, बहुत प्योर है वो। उस तख्त पर हमारे व्यवहारिकता भी वैसी चाहिए, हमारे विचार भी वैसे चाहिए, उन्हें उतने पवित्र चाहिए। और उसको अपने दिल में बिठा लेना, महसूस करना है जैसे दिलाराम श्री बाबा आया और मेरे दिल में समा गया है। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ है तो क्या बताओ, हमारे दिल में है वो। तो इस दिल में अगर दिलाराम भगवान समा जाए तो क्या क्या हो जाएगा फिर बताओ, कितना बड़ा भाग्य है। और स्वयं भगवान ऑफर कर रहा है तो हमको बिठा लेना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। तो हमारा दिल तो गदगद होना चाहिए सवेरे सवेरे, नींद उड़ जानी चाहिए एकदम, लेकिन फिर भी नींद अपना काम कर ही लेती है ना। बाबा कहते ना, फालो फादर की बजाय क्या हो जाता है, माया, फालो माया फादर मदर हो जाती है। तो ब्राह्मण अर्थात ताज, तिलक और तख्तदारी, ब्राह्मण अर्थात स्वतंत्र आत्माएं है ना, हम स्वतंत्र आत्माएं, सब प्रकार के बंधनों से बाबा ने मुक्त कर दिया है। और बंधन कौन सा होता है, सारे बंधन मन के बंधन है, जो मन के बंधनों से मुक्त है वो सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त है। और स्वयं सबसे बड़े बंधन हमारे स्वयं के संकल्पों के बंधन होते हैं, जो हमको सोचना नहीं चाहिए वो हम सोचते रहते हैं, ज़्यादा सोचने की आदत। पिछले संडे की मुरली में भी था और उससे पिछले संडे की मुरली में भी था, ज़्यादा सोचने की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये ज़्यादा सोचने की आदत मेंटल बना देती है, डिप्रेशन मिल जाती है, क्योंकि मन को जो चीज़ चाहिए वो तो मिल नहीं रही है और हम उसको बोझ डालते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ना, अपना फोटो खींचो, टोकरी वाला बोझ वाला फोटो खींचने के लिए अच्छा लगता है ना सबको। तो सारा दिन में बाबा कहते हैं अपने आपके पोज कितने बदलते रहते हैं, बोझ क्यों उठाते हो, टोकरी क्यों उठाते हो। तो हमारे संकल्पों के ही, पुराने संकल्पों के, पुराने संस्कारों के बोझ वो हमारे मन के ऊपर बैठे रहते हैं। तो उनसे हमको मुक्त होने के लिए क्या सोचना है, बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन क्या है, मर्जी वा जन्म है, फिर काका चाचा मामा कहाँ से आगे है ना। तो काका चाचा मामा तो फिर छूटते नहीं है, उनको छूटते इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ज्ञान को बुद्धि में भरा नहीं अच्छी तरह से। फिर जब समय पर मदद की बात आती है तो फिर भगवान की मदद के बजाय काका चाचा मामा याद आते हैं, क्योंकि लंबे समय से हमारी मोह की रगें अभी भी उनसे जुटी हुई है। तो मन का बंधन है सारा, संकल्पों का बंधन है। तो ब्राह्मण अर्थात आत्माएं अर्थात स्वतंत्र, उड़ता पंछी है ना, कोई भी बंधन हमको बांध नहीं सकता, केवल ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में स्वयं को बांध लो तो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा के महावाक्य हैं कि स्वयं को ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध दो तो बाकी सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, उड़ता पंछी बन जाएंगे। और इस सेवाओं का बंधन बहुत मीठा बंधन है, सेवाओं का बंधन हमें बहुत दुआएं देता है, दुआओं की भी एक शक्ति है। और जहां दुआएं हैं वहां दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो दवाइयों की गोलियां वो लेनी पड़ती रहती है, कोई बात नहीं वो भी ले लेना, जबरदस्ती नहीं करने का है, जब डॉक्टर दे तो खा लेने का, नहीं तो कई होता है जबरदस्ती, नहीं मैं तो योग का प्रयोग करूंगा, अरे भाई वो बाबा ने टच करके तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचाया। और बाँ फिर हम अपनी मत चलाते रहते हैं, जो डॉक्टर गोली देता तो खा लेने की उसको, ऐसा नहीं करना है हम योग बल से काम कर लेंगे सारा, फिर दादियों ने क्यों गोलियां खाई इतनी है ना। तो हर चीज की समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो दुआएं हमको ऐसा है कि बीमारियों में हमको वो फीलिंग नहीं आएगी, वो दुख दर्द नहीं होगा, हम उपराम रहेंगे, वो गोली अपना काम करती रहेगी और हमारी दुआएं अपना काम करती रहेंगी। तो ब्राह्मण अर्थात स्वतंत्र आत्माएं और फरिश्ता अर्थात डबल लाइट हल्के, क्या क्यों में नहीं तो पता नहीं, ऐसे है वैसे है, ये फरिश्ता नहीं बनने देती ये बातें। तो हमें सदा अपने स्वरूप में स्थित रहना, फरिश्ता अर्थात मैसेज देने वाले, आया संदेश दिया और उड़े गए, फरिश्ता अर्थात मेहमान, मेहमान की तरह, मेहमान जहाँ जाता है तो उसको अटैचमेंट नहीं होती उसे, उसको पता मुझे जाना है। तो हम भी थोड़े समय के लिए इस धरा पर मेहमान बनकर अवतरित हुए हैं मैसेज देने के लिए। और फरिश्ता अर्थात सबको सहारा देने वाले, सबके सहारे दाता। तो क्या ये लक्षण सारे हमारे में हैं, लक्ष्य और लक्षण समान, ये भी बातें थी ना मुरली में, लक्ष्य और लक्षण समान। बाबा ने कहा अपने ज्ञान के दर्पण में देखो कि मेरे में सारे लक्षण हैं कि नहीं है। आज की मुरली में आईना दिया ना बाबा ने, और क्या क्या दिया? और शस्त्र दिए। कौन कौन से शस्त्र दिए? ये सारा ज्ञान ही शस्त्र है। तो समय पर बाबा कहते हैं शस्त्र को प्रयोग में लाओ। शस्त्र है दुश्मन आ जाए, और पता है शस्त्र है लेकिन चलाने की कला नहीं है, तो होते हुए भी शस्त्र का कोई फायदा नहीं है उसका। तो हमारे पास धारदार संकल्पों के शस्त्र होने चाहिए। एक एक संकल्प पूरा धारदार होना चाहिए। इतना धारदार कोई भी नेगेटिव संकल्प आए तो हमारा संकल्प काट दे उसको, एकदम खत्म कर दे, नष्ट कर दे, दोबारा वो संकल्प हमारे पास आने की हिम्मत ना करे। इतने शक्तिशाली संकल्प, बलशाली संकल्प, समर्थ संकल्प, ताकतवर संकल्प, वरदानी संकल्प होने चाहिए। तो लंबे समय से ज्ञान का चिंतन करने से हमारे संकल्प जो है ना धारदार हो जाते हैं, एकदम तीखे हो जाते हैं, इसलिए तीखी रेस पहन सकते हैं। तो क्या करना है फिर? संकल्पों को धारदार बनाना है। और क्या बाबा ने कहा मुरली में आज? हाँ, सेवा के लिए जा रहे हैं, उमंग उत्साह का खजाना भरकर जा रहे हैं सबको बांटने के लिए। तीसरी बात थी न्यारा और प्यारा। हाँ, इसका बैलेंस चाहिए, कभी न्यारे ज्यादा कभी प्यारे ज्यादा, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। और देवताओं की तीसरी बात थी देवताएं। तो हम सब कौन है? देवताएं हैं, ये सब देवताएं बैठे हुए हैं ना। कौन कौन से देवताएं हैं? काली देवी, दुर्गा देवी, शीतला देवी, शांति देवी और हनुमान जी, संतोषी देवी और गणेश। तो वो हाँ, अभी देवताओं की बाबा ने लक्षण क्या बताए? बाबा ने कहा श्रृंगार सजी सजाई मूर्तियों। तो सवेरे अपना 16 श्रृंगार करना है। कैसा करेंगे 16 श्रृंगार? ये ना ऊपर से लेकर सिर पर ताज, मस्तक में बिंदी, आंखों में ज्ञान का काजल, ज्ञान अंजन कहते ना, है ना, और नाक में एक बाप दूसरा ना कोई उसकी नथनी, चेहरे पर लाली रूहानियत की लाली, होंठों पर प्रभु मिलन की मुस्कान, है ना, हाथों में पवित्रता के कंगन, उंगली में अष्ट शक्ति की अंगूठी, और यहाँ दृढ़ता की करगनी, एक बांधते ना इधर भी, और यहाँ बाजू बंद होते हैं, है ना। तो ये श्रृंगार अपने आप ही 16 श्रृंगार करने हैं, अपने तरीके से उसका चिंतन करना। इसलिए बताया ना, जो हम खुद करेंगे वो ही हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, बाकी ये तो सारा भूल जाता है। पिछले संडे को सुनाओ क्या सुनाया था, कोई कोई तो थे ना इधर, भूल जाता है ना। तीन बिंदी लगाना, और तो और बिंदियां कैसे लगाई थी? तीन बाप बिंदी, मैं बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो मैं बिंदी अर्थात क्या? कौन सी आत्मा? और मैं छोटी सी आत्मा हूँ, लाल आत्मा हूँ, मुस्कुराती हुई आत्मा हूँ, ऐसे अलग से चिंतन करना है। जो हम सबका सुनते ना उसके हटके चिंतन करना है, जितना भी सुना उससे हटके चिंतन करने का, तो मजा आएगा। नहीं तो जो सब सुनते सुना सुनाया चिंतन करते हो, मजा नहीं आता उसमें, तो मन में रहता है ये तो किसने सुनाया था, मेरा अपना क्या है। तो बाबा हमको नए चिंतन के लिए टचिंग कराता रहता है। ठीक है, ओम शांति।